आरव ने आयु और मंथन के बीच हुई घटना के बाद आयु पर किसी तरह का जोर डालना सही नहीं समझा। उसने इवेंट की सारा ड्राफ्ट भी खुद बनाया और दो हफ्ते बाद इवेंट की डेट फाइनल करने के बाद मीटिंग को वहीं क्लोज कर दिया था। आयु ने मीटिंग के अंदर खुद ही शो स्टॉपर बनने के लिए हाँ कह दिया था। उस मीटिंग को हुए पूरे 10 दिन बीत चुके थे और इस दौरान आरव ने अगले दिन ही कॉल करके इवेंट की लोकेशन बदलकर चंडीगढ़ कर दी थी, ताकि उन्हें बार बार मुंबई आना जाना ना पड़े। अगले 5 दिनों में आरव का ड्रीम कलेक्शन ख्वाहिश लॉन्च होने वाला था और इसके लिए चंडीगढ़ का एक 7-स्टार लग्जूरियस होटल बुक किया गया था। इस बीच आरव और आयु की काफ़ी बार मुलाकात हुई, लेकिन आरव काफ़ी प्रोफेशनली बिहेव करता था। उसने ना तो किसी चीज़ के लिए ज़िद की और ना ही एक बार भी आयु को अपने साथ रहने के लिए कहा। आयु आरव के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान भी थी और साथ में परेशान भी। रात के लगभग 8 बज रहे थे। सेटअप करने वाली बाकी टीम जा चुकी थी, जबकि आयु अयान के साथ वहीं पर थी। अयान इस वक्त ऊपर एक बड़ी सी सीढ़ी पर चढ़कर लाइटिंग फिक्स कर रहा था। अयान को ये सब करते हुए काफ़ी झुंझलाहट हो रही थी। उसने आयु की तरफ नीचे देखा और तेज़ आवाज़ में कहा, मुझे तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट बनाया गया था, पर्सनल मेड नहीं, जो हर छोटा काम मुझसे करवाती हो। मुझे सेलिब्रेशन ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। छोटा सा काम ही तो करने के लिए कहा है और उसके लिए भी इतना चिल्ला रहे हो। तुम्हें कितनी बार कह दिया कि हमें इस इवेंट पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर एक छोटी सी गलती भी हो गई तो आरव जानबूझकर उसमें ज़्यादा कमियां निकालेगा और उसे हमें ब्लेम करने का मौका मिल जाएगा, आयु ने चिढ़कर कहा। ठीक उसी वक्त आरव वहां पर अरेंजमेंट्स देखने के लिए आया था। वो उनसे थोड़ी ही दूर खड़ा था और आयु की बात उसके कानों में अच्छे से सुनाई दे रही थी। आरव ने मुंह बनाया और मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, लेकिन मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा, फिर बेवजह मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही है? और मैंने कब इसके काम में कमी निकाली? कौन सा मैं पहली बार इसके साथ काम कर रहा हूँ? लेकिन आजकल वो कुछ नहीं कहते, आरव के बजाय अयान ने जवाब में कहा। आरव ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाया, जैसे वो जवाब अयान ने नहीं उसने खुद दिया हो। आयु जवाब में कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर हल्की मायूसी के भाव उभर आए थे और वो मन ही मन खुद से बोली, हाँ, इसी बात की तो चिंता है कि आजकल वो कुछ कह क्यों नहीं रहा, कहीं आरव पागल तो नहीं हो गया है। आयु खोई हुई थी तभी अयान ने चिल्लाकर कहा, मेरी उतरने में हेल्प करोगी या फिर उसी के ख्यालों में खोई रहोगी? एक्सक्यूज मी, मैं किसी के ख्यालों में नहीं खोई हुई हूँ। और हाँ, तुम क्या डेलिकेट बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो? इससे अच्छा कि ये काम मैं खुद कर लेती। वैसे भी इस इवेंट का ज्यादातर काम मैं ही संभाल रही हूँ, आयु बोली और अपना हाथ बढ़ाकर उसे नीचे उतरने में मदद करने लगी। ये बस तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम ज्यादा काम करती हो, जबकि तुम बस ऑर्डर्स मारती रहती हो, अयान ने जवाब दिया। अयान और आयु एक दूसरे से बच्चों की तरह बहस कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र आरव पर पड़ी, जो न जाने कब से वहां खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। आरव की शक्ल देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो उनकी बातें सुनकर कितना इरिटेट हो रहा था। आयु ने अयान की तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, क्या लगता है अयान, क्या इसने हमारी सारी बातें सुन ली होंगी? शक्ल देखकर तो यही लग रहा है कि पक्का सब कुछ सुन लिया होगा। देखो ना तुम्हारे मिस्टर खुराना ने कैसे मुंह बना रखा है, अयान ने भी धीमी आवाज में कहा। हर बार की तरह जब अयान ने आरव को आयु का मिस्टर खुराना कहा तो वो गुस्से से चिढ़ गई थी। वो जोर से चिल्लाकर बोली, कितनी बार कहा है कि ये मेरा नहीं है? आरव ने सिर हिलाया और उनके पास बढ़ते हुए कहा, कौन तुम्हारा नहीं है और तुम ऐसे हर छोटी बात पर चिल्लाने क्यों लगती हो? आराम से बात नहीं कर सकती? आयु ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सर, और कोई ऑर्डर्स? अपना मुंह बंद रखो और चिल्लाने के बजाय काम पर ध्यान दो, बस इतना ही करना काफी होगा, आरव ने बेपरवाह अंदाज में कहा और दूसरी तरफ जाने के लिए पलट गया। उसने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि आयु फिर से पीछे से चिल्लाई, मुंह बंद रखने से तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मैं मुंह बंद रखूंगी तो तुम्हारा काम हो ही नहीं पाएगा। सब कुछ अच्छे से चल रहा है लेकिन फिर भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर मुझसे इतनी दिक्कत है तो क्रिस्टी से बात क्यों नहीं कर लेते? आयु का गुस्सा आरव पर इस वजह से नहीं था कि वो उसे चिल्लाने के लिए मना कर रहा था, बल्कि उसे आरव पर इस बात का गुस्सा आ रहा था कि वो पिछले कुछ दिनों से काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। वो उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था और अभी भी उसे टालकर दूसरी तरफ जाने लगा। आरव वापस आयु की तरफ मुड़ा और बोला, लगता है अब तो मिस डिसूजा से बात करनी ही पड़ेगी और उन्हें कहना पड़ेगा कि उनके मैनेजर बहुत बदतमीज हैं। आयु और आरव एक दूसरे के सामने एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां आरव की आंखें शांत थीं तो वहीं आयु की आंखें गुस्से से उसे घूर रही थीं। आयु की चिढ़न और झुंझलाहट किस वजह से थी ये अयान को समझ आ रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोला, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो हर बार आप मुझे इन दोनों के बीच लाकर खड़ा कर देते हो? इससे पहले कि इन दोनों का झगड़ा शुरू हो और आयु अपने गुस्से में भाई को कुछ ऐसा वैसा बोल दे, मुझे ही बीच में आना होगा। अयान जल्दी से उनके पास गया और एक नकली मुस्कुराहट के साथ बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर खुराना? कुछ काम था क्या आपको? कुछ चेंजेस करवाने हैं? नहीं, कोई काम नहीं है, और अगर होगा भी तो तुम दोनों को नहीं बताऊंगा। जब कोई मेरे सामने इस तरह चिल्लाकर बात करता है तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। आरफ बिना किसी भाव के बोला, और तुम्हारी शक्ल देखकर मेरे दिमाग में दर्द होता है। आयु कंधे उचकाकर बोली। आरफ चाहे खुद पर कंट्रोल करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आयु की हरकतें देखकर उसका मन उसे और चिढ़ाने को करता था। अच्छा, तो मुझे देखकर तुम्हारे दिमाग में दर्द होता है। ठीक है, अब तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही रहूंगा, आरफ ने भौहें से कोड़कर कहा। तुम कभी बदल ही नहीं सकते, मैं भी खामखा तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। देखा अयान, इसे अभी भी दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है, आयु ने अयान की तरफ देखकर झुंझुवाकर कहा। उसकी बातें आरफ को हैरान कर रही थी। इस बार सच में उसने कुछ नहीं किया था, और आयु जानबूझकर उससे झगड़ा कर रही थी। मैंने कब तुम्हें परेशान किया, आरफ चौंकते हुए बोला। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? पिछले 10 दिनों से बिना वजह ये सड़ी हुई शक्ल लेकर घूम रहे हो, उसका क्या? ना किसी से ठीक से बात कर रहे हो, ना ही पहले की तरह दूसरों पर बेवजह चिल्लाते हो। क्या हुआ है तुम्हें? दूसरों की अटेंशन लेने के लिए ये नया तरीका निकाला है तुमने? आयु बिना सोचे समझे आरफ को सुनाई जा रही थी। वहीं उसकी बातें सुनकर अयान ने अपना सिर पकड़ लिया था। एक तरफ तो वो कहती थी कि उसे आरफ से कोई रिश्ता नहीं रखना है, दूसरी तरफ उसका बदलना उसे खटक रहा था। वहीं आरफ को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो आयु उसे इतना सुना रही है। यही तो वो चाहती थी कि आरफ उससे दूर रहे, और अब जब वो उससे दूर था तो वो उससे इस बात पर झगड़ा कर रही थी कि आरफ उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ? यही तो तुम चाहती थी, आरफ हल्का मुस्कुराकर बोला। गलतफहमी पालना बंद करो, मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी, और ना ही कोई फर्क पड़ता है, आयु ने सख्त आवाज में कहा। अयान को यही लगा कि उसके वहां होते हुए वे दोनों खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। उन दोनों को वहीं पर छोड़कर अयान बिना कुछ बोले वहां से जाने लगा।
उसके जाने के बाद आरव और आयु अकेले रह गए थे। आयु कब से आरव से अकेले में बात करने का मौका ढूंढ रही थी। जिस दिन वो मीटिंग हुई थी तब से ही उसे आरव का बर्ताव खटकने लगा था, और वो इस बारे में उससे बात करना चाहती थी, पर आरव जब भी आयु को अकेले देखता तो वो उस जगह से ही चला जाता था। अयान के जाने के बाद आरव ने आयु की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर कहा, मुझे भी अब चलना चाहिए। इतना कहकर आरव दूसरी तरफ पलट गया था। उसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया होगा कि आयु ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव का चेहरा दूसरी तरफ था, उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था, और वो आयु के साथ एक और नए झगड़े के लिए खुद को तैयार करने लगा। तभी अचानक आयु ने रुआसी आवाज में कहा, तुम्हारी ये खामोशी मुझे तकलीफ देती है, खासकर तब जब तुम अकेले ही हम दोनों से जुड़े फैसले कर लेते हो। वैसे भी मुझे सब पता है। आरव जल्दी से आयु की तरफ मुड़ा, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, और क्या पता है तुम्हें? सब कुछ, तुम्हें सब पता है। तुम्हें क्या लगा कि उस दिन तुम होटल रूम में मुझसे मिलने के लिए आओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अचानक मंथन डिजायर्स में दिखाई नहीं दे रहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं जो मुझे समझ ना आए, आयु ने पलकें झपकाकर कहा। आयु को पहले दिन ही पता चल गया था जब आरव उससे मिलने के लिए आया था, और अयान ने कॉल आने का झूठ बोला था। वो नींद में थी, लेकिन जागने के बाद वो उसके खुशबू को महसूस कर सकती थी, वो उसे पहचानती थी। आरव बिल्कुल चुप हो गया था, उसे समझ नहीं आया वो क्या जवाब दे। तभी आयु उसे समझाते हुए बोली, तुम अच्छे से जानते हो मंथन बुरा नहीं है, फिर तुमने उसे काम से क्यों निकाला? वो बस कुछ पल के लिए अपने होश खो बैठा था, लेकिन यकीन करो वो सब करने का इरादा उसका भी नहीं रहा होगा। आयु की बातें सुनकर आरफ के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने जवाब में कहा, क्या मेरी गलती उससे ज्यादा बड़ी थी जो तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? तुम उसका फेवर कर रही हो और चाहती हो कि उसे मैं वापस काम पर रख लूं। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मंथन को इतना अच्छे से समझती हो, फिर मुझे क्यों नहीं? क्या जो मैंने किया वो इतना बड़ा गुनाह था जो तुम भुला नहीं सकती? हाँ, क्योंकि मंथन और तुम में फर्क है। मैंने उस पर यकीन करके अपना सब कुछ उस पर नहीं सौंपा था, खुद को उसके हवाले नहीं किया था, तुम्हें किया था, और तुमने अगले दिन मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने मुझ पर शक किया था। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे साथ एक रात बिताने के बाद अगली सुबह किसी और के साथ? आयु बोलते हुए रुक गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, वो ठीक से बोल तक नहीं पा रही थी, और उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली। उसके आंसुओं के आगे आरव ने हार मान ली थी। वो कुछ कदम पीछे हटते हुए बोला, ठीक है, नहीं माफ करना तो मत करो, और वैसे भी मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। वैसे भी तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं कि तुम मंथन से शादी करो। आयु हैरानी से आरव की तरफ देखने लगी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, तुमने उस दिन हमारी बातें सुनी थी ना? आरव ने जवाब में बिना कुछ कहे सिर हिला दिया था। उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये कहते हुए मुझे बहुत दर्द तो हो रहा है, पर तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। जैसा कि तुम्हारे डैड ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए तो मैं तैयार हूँ, और आज ही पेपर्स बनवाने के लिए बोल दूंगा। 4 दिन बाद इवेंट है आयु, और तुम तब तक अपना डिसीजन बता सकती हो। आरव ने इस बार आयु को जवाब देने का मौका नहीं दिया। आयु की बातों से उसे यही लगा कि उसके लिए मंथन की इतनी बड़ी गलती माफ करना आसान था, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती नहीं। मतलब साफ था कि वो मंथन के साथ ही जाने वाली है। आरव ये अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकता था। उसने आयू को वहीं छोड़ा और वहां से चला गया। हालांकि दूसरी तरफ पलटते ही उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया और उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह गया था। वहीं आयू को आरव को रोकने तक का मौका नहीं मिला। जब तक उसे आरव की बातों का मतलब ठीक से समझ आया, वो वहां से जा चुका था। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। वैसे यहाँ लिखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो अच्छी इनकम और दूसरे समीक्षा के थ्रू मोटिवेशन, और मुझे तो दोनों ही नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर का लेखक बेचारा मर चुका है। तो मुझे जिंदा रखने के लिए एक समीक्षा कर जाना। अगले पार्ट पर मिलते हैं।